वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी कालशंकु, दूसरा अध्याय, भाग 7। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। नो, एवरीथिंग इज फाइन हियर, नो नीड टू वरी। नलिनी, मैं तुम्हें वापस से कॉल करूंगा, बाय। अनंत के पिछली शाम को अचानक निकल जाने की वजह से नलिनी काफी परेशान थी, इसलिए अनंत उसे फोन पर समझाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन पहले तक नलिनी भी अनंत की बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, मगर अब उसे समझ आ गया था कि ये जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए उसने अनंत को इस पूरे झमेले से दूर रहने की सलाह दी। खैर, अनंत नलिनी को समझाकर वापस गेस्ट हाउस के अंदर आ गया और राज से बात करने लगा। राज और ज्ञान दोनों ही बता रहे थे कि सुशांत का व्यवहार पहले से काफी बदल गया है। इस वक्त वो अति आत्मविश्वास की हदों को पार कर चुका था, जो उसके लिए घातक साबित हो सकता है। अनंत ने एक ठंडी सांस ली और कहने लगा, यार मैं शुरू से कह रहा था कि यहां रुकना ठीक नहीं है, मगर सुशांत वो न जाने क्या साबित करना चाहता है। अनंत की बात सुनकर राज ने गिल्टी फील करते हुए कहा, आई एम सॉरी अनंत सर, मुझे सुशांत सर के झूठ में उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। अनंत उसे देखकर हंस पड़ा और कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं सुशांत को जानता हूं, यहां तक कि अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता, मगर बात इतनी सी नहीं है, वो किसी की सुन भी तो नहीं रहा है, उसने तो कल मुझे ही फोन पर उल्टा सीधा सुना दिया। थोड़ी देर वहां सन्नाटा छाया रहा। इसके बाद अनंत ने एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से उसे वो सारी बातें बताई जो उसे सपनों में दिखाई दी थी या उसने महसूस की थी। उसकी बात सुनकर ज्ञान और राज दोनों चक्कर में पड़ गए। राज ने कहा, सर ये सब 9 तारीख को शुरू हुआ था जब आप गेस्ट हाउस लौट कर आए थे, उस वक्त आप बड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे, आपने सुशांत सर के बारे में पूछा, आपने ये भी कहा कि वो जिंदा है क्या। ज्ञान भी बीच में बोल पड़ा, हाँ सर, आप कुछ एलियन देवता पता नहीं क्या कह रहे थे कि रात को कुछ हुआ है, आपकी बातों से लग रहा था कि सुशांत सर को कुछ हो गया है। अनंत को ये सारी बातें याद नहीं थी, लेकिन राज और ज्ञान को सुनकर वो सोचने पर मजबूर हो गया। थोड़ी देर तक वो तीनों कई सारे पहलुओं पर बात करते रहे और आखिर में उन्होंने निश्चय किया कि वो सुशांत से इस बारे में बात करेंगे।
सुशांत,
अनंत सुशांत के कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन कमरे का नजारा देखकर उसका मूड खराब हो गया।
यार तू सुबह सुबह पीने बैठ गया,
अनंत ने सुशांत के पास जाकर कहा, लेकिन सुशांत के तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था।
सुशांत, आई एम टॉकिंग टू यू,
अनंत ने उसके पास जाकर कहा। जवाब में सुशांत ने अनंत को देखकर अपना विस्की का ग्लास ऊपर कर दिया। अनंत ने उसे झिड़कते हुए कहा,
स्टॉप इट, ये क्या लगा रखा है।
अनंत की बात सुनकर सुशांत एक सेकंड के लिए ठिठका, मगर उसने हंसते हुए जवाब दिया,
यार नींद नहीं आ रही थी, यू नो लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, आई एम वेरी नियर टू क्रैक दिस पजल, मैं इस गुत्थी को सुलझाने के करीब हूं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं किया है, मेरे खानदान में किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, मेरे तो क्या तेरे खानदान में भी।
सुशांत की जुबान लड़खड़ाने लगी थी।
अनंत, दिस इज द लाइफ, एडवेंचर, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, यू नो इस वक्त मैं जो भी कर रहा हूं वो एकदम सही हो रहा है, बिकॉज आई एम लिसनिंग टू मी, आई एम लिसनिंग टू माई इनर वॉइस, मैंने हमेशा काम किया तेरे अकॉर्डिंग, तू लीड करता था बट मैंने कभी जेलस फील नहीं किया, मैंने हमेशा तुझको सपोर्ट किया, बट दिस टाइम, इस बार मैं सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूं, तुझे खुश होना चाहिए मेरे लिए, पर मुझे लग रहा है तू मुझसे, चल छोड़, क्या रखा इन बातों में, पता है उन डकैतों का बॉस वो मुझे देखकर हिल गया था, मैं उस वक्त उससे बिल्कुल नहीं डरा, उसके सारे गुर्गों पर
मैं अकेला भारी पड़ा। हाँ, एक बात और जो मैं बताना भूल गया था। शुरू में तो वो डकैत बॉस मेरी बात नहीं सुन रहा था, फिर एक बुड्ढा वहां आया, यू नो बुड्ढा, ओल्ड मैन। उसने मेरी तरफ देखा, मैं उससे बोला नहीं, मैं उससे नहीं बोला, पर मैं सोच रहा था कि इसको बोलूं, अबे खा जाएगा क्या मेरे को। मैं नहीं बोला उससे, बट मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने मुझे देखकर कुछ तो सोचा था, जिसके बाद उसने उस बॉस को कुछ बोला और फिर वो लोग मुझसे बात करने को तैयार हो गए। पर इस साली ये पुलिस बीच में आ पड़ी, वरना तो मैं इसको सॉल्व करने ही वाला था। अनंत, तू उस वक्त होता ना वहां पर, तुझे भी मजा आ जाता। काश तू होता बट अच्छा हुआ जो तू नहीं था वहां पर, वरना तू रो देता, सरेंडर कर देता उन डकैतों के सामने, काम बिगाड़ देता। दिस इज नॉट योर टास्क, ये बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। अनंत को सुशांत की बात सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने उस वक्त वहां से बाहर निकल जाना ठीक समझा। उसे इस तरह जाते देख सुशांत ने खड़े होकर कहा, कहां जा रहा है अनंत, वेयर आर यू गोइंग, ये तेरे बस की बात नहीं है, इस बार मैं लीड कर रहा हूं, आई एम द बॉस हियर, आई एम द बॉस। अनंत को सुशांत की बात सुनकर गुस्सा आने लगा था, मगर वो कोई जवाब दिए बगैर राज और ज्ञान के पास चला गया। राज ने अपना डर जाहिर किया, सर मुझे नहीं लगता है सुशांत सर मानने वाले हैं, लगता है उस कोन ने जैसे उन्हें पागल कर दिया, मुझे तो डर लग रहा है कि अब वो क्या करने वाले हैं। अनंत ने कुछ सोचते हुए कहा, आज 14 तारीख है और कल है 15 तारीख, 15 फरवरी 2019, आखिर माजरा क्या है। राज, ये सारा चक्कर शुरू हुआ 9 तारीख को, जब पहली बार सुशांत ने वो बॉक्स ढूंढा। पता नहीं क्यों पहले दिन से ही मुझे ये सब कुछ देखा देखा सा लग रहा है, इवन वो पुलिस ऑफिसर जो सुशांत से उलझ रहा था, मुझे लगा मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, और वो क्या नाम लिया तुमने, कुंवर अनूप सिंह, ये नाम भी मेरा सुना हुआ है, पता नहीं ये सब क्या है, जैसे कोई सपना हो, जैसे मैंने भविष्य को देख लिया हो, मगर एक बात मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूं कि जिन इंसिडेंट्स की तुमने बात की, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हर बार वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, कुछ तो चक्कर है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ मिस कर रहा हूं। राज ने कोई जवाब नहीं दिया, उसका सिर बुरी तरह से घूम रहा था। अनंत ने कुछ सोचकर कहा, एक काम करना जरा, वो कौन कहां रखा है लेकर आना। जवाब में राज ने बैग खोलकर अनंत के हाथ में वो कौन पकड़ा दिया। अनंत उलट पलट कर उस शंकु को देख रहा था, फिर उसने उस शंकु को दोनों हाथों से पकड़कर आंखें बंद कर ली। वो बड़ी गहराई से उन चित्रों के बारे में सोचने लगा जो उसके अवचेतन में बसे थे। वो मन ही मन कोई संकेत पकड़ने की कोशिश कर रहा था। राज भी उसे इस तरह देखकर सोच में पड़ गया, लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ नया याद नहीं आया। आखिरकार थक हार कर उसने शंकु को अपनी जगह रख दिया। राज सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन अनंत के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं था। शाम होने वाली थी, चारों लोग कमरे में बैठे हुए बात कर रहे थे, लेकिन जैसे हर कोई सच से मुंह चुराना चाह रहा था। फिर सुशांत उठ खड़ा हुआ, उसके हाव भाव से साफ लग रहा था कि वो फिर से कुछ अप्रत्याशित करने वाला है। अनंत बोल पड़ा, कहीं जा रहा है? सुशांत ने साफ साफ कह दिया कि वो बल्लियों से मिलने उनके गांव जा रहा है। सभी ने उसे बहुत समझाया कि वहां जाना कितना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन उसके सिर पर जैसे भूत सवार हो चुका था। उसने कहा, अनंत तू मुझे रोक क्यों रहा है, मैं इस चांस को नहीं छोड़ सकता हूं, आखिर चाहता क्या है तू? अनंत ने धीमी आवाज में कहा, सुशांत तू बात को समझ, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। सुशांत भड़क उठा, तू कोई भगवान है कि तुझे जो लगेगा वो होके रहेगा? तू राज से पूछ हमने किस तरह से काम किया है। राज बीच में बोल पड़ा, सुशांत सर मान जाइए, अनंत सर सही कह रहे हैं। राज तू बीच में मत बोल, ये काम मैं अकेला भी कर सकता हूं, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब इस काम को अकेला ही करने वाला हूं। सुशांत की बात सुनकर राज का चेहरा उतर गया था। आखिरकार ज्ञान ने कहा, सर छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आप लोगों जितना तो नहीं जानता हूं, लेकिन इस टीम में ऐसा कोई नहीं है जो दूसरे की काट करना चाहता हो, हम बस ये कहना चाहते हैं कि इस काम में जोखिम है, आप ये काम मत कीजिए। सुशांत ने सबके चेहरे देखे, उसे लग गया कि वो कुछ ज्यादा बोल गया है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब अनंत ने कहा, ठीक है, मगर तू अकेला नहीं करेगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। सुशांत ने हिकारत से कहा, नहीं तू रहने दे। लेकिन अनंत अपनी बात पर अड़ गया था, नो, मैं तेरे साथ चलूंगा, भले ही फिर कुछ भी हो जाए। अनंत ने जिस तरह से बात कही थी, सुशांत मना नहीं कर सका। उसने कहा, ठीक है चलो, हम अभी बल्लियों के गांव में चलेंगे। ज्ञान ने कहा, बट सर ड्राइव तो मैं ही करूंगा। सुशांत ने सबके चेहरों की तरफ देखा और कहा, ठीक है। सुशांत के जिद की वजह से वो लोग बल्लियों की तलाश में निकल पड़े थे। राज के काफी कहने के बाद भी अनंत ने उसे साथ नहीं लिया था, लेकिन शायद किस्मत उन्हें कहीं और ले जाना चाहती थी। बल्लियों के गांव की तरफ घूमते ही उन्हें पुलिस की गाड़ियां दिखाई थी। पुलिस शायद अभी भी बल्लियों की तलाश में थी। सुशांत अभी पुलिस के झमेले में नहीं उलझना चाहता था, इसलिए उन्होंने वहां से वापस लौटने का फैसला किया। सुशांत का मूड खराब हो चुका था, वो गुस्से में झल्ला रहा था। वहां से थोड़ा दूर आने पर उसने ज्ञान से गाड़ी रोकने को कहा और सिगरेट फूंकने लगा। लग रहा था जैसे वो अपना गुस्सा सिगरेट पर उतार रहा हो। और अनंत, वो दूर आसमान में चमकते बिजली की तरफ देख रहा था। तभी उसे कुछ याद आने लगा। वो सोच रहा था, आज 14 फरवरी की रात, मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग इस रात को गाड़ी में थे, मैं, सुशांत और ज्ञान, तीनों हम तीनों कहीं जा रहे थे, पर कहां, शायद। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और सुशांत से पूछा, सुशांत अब क्या करने का मूड है? सुशांत ने ऐसे दिखाया जैसे वो कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सोच नहीं पा रहा हो। ऐसे में अनंत ने कहा, हम उस जगह चल रहे हैं जहां तुझे वो कौन मिला था। सुशांत ने चौंक कर कहा, व्हाट? लेकिन इस वक्त? हां इस वक्त, मेरी बात मान, इस वक्त हमें वहां जाना चाहिए। अनंत की बात में विश्वास झलक रहा था, इसलिए सुशांत ने ना चाहते हुए भी ज्ञान से वहां चलने के लिए कह दिया। करीब घंटे भर के सफर के बाद टूटी फूटी सड़कों पर हिचकोले खाती जीप उस जगह के पास पहुंच चुकी थी जहां से उन्होंने वो बक्सा निकाला था। अनंत ने ज्ञान से कहा, हमें उस जगह तक जाने की जरूरत नहीं है, जीप सड़क पर ही रहने दो। सुशांत ने बरबस ही कहा, यहां सड़क दिखाई दे रही है? सुशांत की बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। ज्ञान ने गाड़ी रोक ली थी। समय बीतता जा रहा था। सुशांत को इस पूरी कवायद पर गुस्सा आने लगा था। यार हम लोग यहां आकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या है आखिर यहां, जो था वो हम ले जा चुके हैं, सुशांत ने झल्लाते हुए कहा। लेकिन अनंत ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वहीं अंधेरे में ताकते हुए कुछ याद करने की कोशिश करने लगा। एकाएक उसने अपनी घड़ी पर निगाह डाली और जैसे उसे कुछ याद आ गया। उसने सुशांत से पूछा, सुशांत तेरी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? जवाब में सुशांत ने अनमने ढंग से अपनी घड़ी देखते हुए कहा, 12 बजे हैं। उसकी बात सुनते ही अनंत ने उसे अपनी घड़ी दिखाई। घड़ी में चमकती हुई रेडियम की सुइयां 1:15 बजा चुकी थी। ये देखकर सुशांत ने एक बार फिर से अपनी घड़ी देखी जिसमें अभी भी 12 ही बजे थे। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही अनंत ने कहा, अब अपने मोबाइल में टाइम देख। सुशांत ने मोबाइल में देखा और हैरत के साथ कहा, इसमें तो 12:30 हो रहे हैं। हाँ मेरे मोबाइल में भी 12:30 ही हो रहे हैं। अपना मोबाइल आगे करते हुए अनंत ने कहा, इसका मतलब जानता है? इसका मतलब है कि, सुशांत ने बीच में ही कहा, कहीं यहां कोई स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है? तब तक अनंत अपने बैग में से कंपास निकाल चुका था। उसने कंपास को निकालकर जमीन पर रख दिया। कंपास की सुई तेजी से अपनी जगह पर घूम रही थी। सुशांत ने कंपास हाथ में लेकर कहा, इसका मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल फोन भी खराब हो सकते हैं। उन्होंने तीनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिए। थोड़ी देर में वहां कोहरे की गहरी चादर छा गई। अनंत ने कहा, कुछ समझ आया इस जगह का चक्कर? ये मैग्नेटिक फील्ड अनयूजुअल नहीं लग रहा? सुशांत ने कहा, हाँ धरती पर कुछ जगहों पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, शायद बरमूडा ट्रायंगल में भी ऐसा ही कुछ होता है। खराब मौसम और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जहाज वगैरह रास्ता भटक जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अनंत ने बात पूरी की, शायद 100 साल पहले गोपालदास के काफिले के साथ भी यही कुछ हुआ होगा। आज के वक्त हमारे पास इतनी फैसिलिटीज तो हैं, 100 साल पहले तो उनके साथ क्या हुआ होगा। सुशांत को हंसी आ गई। अनंत ने पूछा, तू हंस क्यों रहा है? सुशांत ने जवाब दिया,
बड़ी मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि किस्मत हर बार मुझे सही जगह पर ले आती है,
वरना आज तो मैं सोच रहा था कि किस्मत मुझे धोखा क्यों दे रही है। आज तेरे बहाने से मैं सही जगह पर पहुंच गया हूं। अनंत को खीज आने लगी। वो समझ चुका था कि सुशांत को कुछ भी कहने, उसे कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी उसने कहा, पता है हम लोग यहां क्यों आए हैं? सुशांत ने जवाब दिया, क्योंकि किस्मत चाहती है कि मैं उस मिस्ट्री को सॉल्व करके रहूं, और इस बार उसने तुझे अपना टूल बनाया है। इसके बाद अनंत ने कुछ नहीं कहा। करीब घंटे भर का समय बीत चुका था। अनंत ने कहा, यार टाइम क्या हो गया होगा? उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, मगर सुशांत ने कहा, 1:30 बजा है, अगर 1:30 बज गए होते तो आंधी तूफान शुरू हो जाते। तभी सुशांत के मन में कुछ आया। उसने ज्ञान से कहा, ज्ञान तेरा फोन देना। ज्ञान ने अपना फोन निकालकर सुशांत की तरफ बढ़ा दिया। सुशांत ने उसके फोन को ऑन कर दिया। ज्ञान के कीपैड वाले फोन की स्क्रीन वाइब्रेट करती हुई ऑन हुई। 1:25 हो गए हैं। सुशांत का यह कहना था कि तभी अनंत को दूर एक लाइट जलती नजर आई, लेकिन लाइट जलने के तुरंत बाद बंद हो गई। उसने धीरे से सुशांत से कहा, सुशांत हम यहां अकेले नहीं हैं, कोई और भी है यहां। सुशांत उस तरफ देखने लगा जहां अनंत को रोशनी दिखाई दी थी, लेकिन सुशांत को जैसे अनंत की बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो बुदबुदाया, कोई नहीं है यहां। और उसने अपनी जेब से टॉर्च निकालकर उस दिशा में रोशनी की, लेकिन टॉर्च ऑन करते ही सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि कोहरा और भी ज्यादा घना हो चुका था। सुशांत टॉर्च से हर दिशा का जायजा लेने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उस कोहरे ने उन लोगों को कैद कर लिया था। सुशांत ने अनंत से पूछा, इतने तेज घने कोहरे में तुझे रोशनी कहां से दिखाई दे गई? अनंत ने सुशांत की बात में छिपा तंज पकड़ लिया था, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उन्हें ऊंटों के रंभाने की आवाज सुनाई दी। ज्ञान बोल पड़ा, सर यहां सही में कोई है? वो लोग ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनने लगे। ऊंटों की आवाज के साथ उन्हें इंसानी बोली भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो लोग क्या बात कर रहे थे वो समझ नहीं आ रहा था। ज्ञान ने पूछा, सर क्या बात कर रहे हैं ये, कौन हो सकते हैं? सुशांत ने कहा, जरूर ये बल्ली है, मैंने उस बूढ़े को इसी लैंग्वेज में बात करते सुना था। अनंत बोल उठा, मगर ये लोग यहां क्या करने आए हैं? ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग हमारे पास आ रहे हैं। सुशांत ने टॉर्च की रोशनी आवाज की दिशा में की, जहां घने कोहरे के बीच ऊंटों के साए नजर आ रहे थे। सुशांत भी समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग उनसे क्या चाहते हैं। तभी आसमान में जोर की चमक उठी और बिजली कड़कने की भयंकर आवाज ने उनके कानों को बहरा कर दिया। बिजली ठीक उसी जगह गिरी थी जहां से उन लोगों ने जमीन में से बक्सा निकाला था। लगातार काफी देर तक बिजली चमकती रही। इतनी जोर से बिजली चमकने की वजह से ऊंट बदहवासी की हालत में इधर उधर भागने लगे थे। करीब 1 मिनट में ही जोरदार तूफान और बारिश का दौर शुरू हो चुका था। सुशांत, अनंत और ज्ञान अपनी गाड़ी के पास दुबक गए। करीब 1 घंटे की बारिश और तूफान के बाद मौसम साफ हो चुका था। उन्होंने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। वो लोग जीप में रवाना होकर गेस्ट हाउस के लिए निकल पड़े। थोड़ा आगे जाकर उन लोगों ने अपने फोन संभाले। ज्ञान का फोन खराब हो चुका था, जबकि अनंत और सुशांत के फोन पर राज का मैसेज था। ये राज ने क्या मैसेज किया है? कॉल मी, इट्स अर्जेंट। अनंत ने तुरंत राज को फोन लगाया। राज ने बताया कि गेस्ट हाउस में 3 लोगों ने उनके कमरों में चोरी की कोशिश की थी। जब उन्हें पहले कमरे में कुछ नहीं मिला तो जिस कमरे में राज ठहरा हुआ था वहां उन्होंने राज के साथ मारपीट करके सामान चुराने की कोशिश की, लेकिन गेस्ट हाउस के एम्प्लॉयज के आ जाने की वजह से वो लोग भाग छूटे। सुशांत ने सुनते ही कह दिया कि वो लोग जरूर बल्ली थे, लेकिन उसने राज को पुलिस में किसी भी तरह की रिपोर्ट देने से मना कर दिया। वो लोग गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे और अनंत की यादों में कुछ नई यादें जुड़ने लगी थी। इस तरह के भ्रम की वजह से उसका सिर फटने लगा। वो सोच रहा था कि उसे इस सबसे पीछा छुड़ाकर भाग जाना चाहिए, मगर वो इस सबसे कैसे भाग सकता था? इस कहानी का असल किरदार तो वही था। उसे तो अभी काफी कुछ देखना था, काफी कुछ छेलना था, भले ही वो चाहे या ना चाहे। सुबह का वक्त, अनंत इस वक्त बल्लियों की ढाणी में अकेला ही पहुंच चुका था, लेकिन ढाणी पूरी तरह से खाली पड़ी थी। अनंत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ढाणी के सारे लोग कहां चले गए हैं। तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी,
सैरी बिलाव, तू भी आ गया है।
अनंत यह आवाज सुनते ही चौंक पड़ा। उसने पलटकर देखा तो वो शख्स उसकी तरफ ही देख रहा था। उसके मुंह से निकल पड़ा,
भभूति पल्ली।
उस शख्स ने जवाब दिया,
हां भभूति पल्ली, और तू इस वक्त भभूति पल्ली के इलाके में खड़ा है। चल तुझे भी तेरे दोस्त के पास पहुंचा देता हूं।
यह कहकर भभूति एक विद्रूप हंसी हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर अनंत का कलेजा बैठा जा रहा था। उसने अटकते अटकते पूछा,
सुशांत कहां है?
लेकिन भभूति अभी भी बुरी तरह से हंसे जा रहा था। तभी एक बूढ़ा सामने निकल कर आया, जिसे देखकर अनंत ने अपने आप से कहा,
यह तो वही बूढ़ा है,
लेकिन इसके हाथ। उस बूढ़े के हाथों पर लाल रंग लगा हुआ था और अनंत को समझ आ गया था कि यह महज लाल रंग नहीं है, यह खून है। उस बूढ़े ने खून से सने हाथों से भभूति बल्ली के माथे पर तिलक लगाया। अनंत चीख पड़ा,
सुशांत, क्या किया तुमने सुशांत के साथ?
उस बूढ़े ने जवाब दिया,
मैं तने बताया हो, काल शंकु कोई न माफ ना करे है।
आप सुन रहे थे कालशंकु दूसरा अध्याय पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 7। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस।